जय धवला पुस्तक 11वीं लेक्चर नंबर 12
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो चित्तानं नमो आयर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोहे सौवसाऊनं वेदक वेदक वेदकं अवेदकं वेदकं ससं सिद्धं सिद्धं पणमिय शिरसा कोष्ठं वेदक महायारम।
यह श्री भीषण आचार्य ऋषि जयदौला टीका है जो कथा कौन कथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है जिनके कर्ता है गुणधर भट्टार तथा यतीश्वर आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 95 पर आ गए। 95 यहाँ अभी हम आदेश से बात चलेगी। जघन्य में हम देख रहे थे क्षेत्र और स्पर्शन की बात चल रही थी ना, अपने स्पर्शन और उसमें भी हम जघन्य के प्रकरण में आदेश की बात चल रही। आदेश से नारकीय में नीला नीचे से दूसरी लाइन, आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7-9 कषायों के जघन्य अनुभाग के उदीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्योंकि जघन्य का वो वेदक कभी उनके कब होते हैं तो कहते हैं उनका स्पर्शन क्षेत्र के समान है लोग का असंख्यात। जघन्य अनुभाग के उदीरकों ने लोग के असंख्यात भाग और त्रसन आदि के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग समान क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये तो शास्त्रीय नरक से मानना करने वाले की बात है। सम्यक और समय मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उद्गीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, उनका अपना लोक का संख्या। इसी प्रकार दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में जानना चाहिए पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान बन जाते हैं। सीरियंचों में मिथ्यात्व और 8 कषायों के जघन्य अनुभाग के उद्गीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है,
पूरा लोक हो जाएगा
क्योंकि मिथ्यात्व का जघन्य कब होता है पांचवे के समान।
अच्छा लोक का संख्या लोक का
संख्या 8 कषायों में अनंत अनुबंधी का वही पांचवे के समान है और फिर 4 का
चौथे से पांचवे में
जाने वाले हैं। 8 में अनंत अनुबंधी और अप्रत्यक्ष अनुबंधी तो क्षेत्र के समान ने लोक का संख्या था। अजगण्य अनुभाग के उद्गीरकों ने सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। सम्यक्तों के जघन्य अनुभाग के उद्गीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी लोक का संख्या क्योंकि वो जो पांचवे गुण स्थानवर्ती
ये तो यहाँ पे तो कृतकों के अंदर दे सकते हैं
ना। हाँ हाँ सम्यक्त का कृतक चले क्योंकि तीरियन से इन जनरल बात चल रही है ना, वो तो भोग भूमि वाले लेना। अजगण्य अनुभाग के उद्गीरकों ने लोक के असंख्या के भाग त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, यानी 16वें स्वर्ग में मालांकित करने वाले जीवन की अपेक्षा तभी ये बात इतनी गठित हो सकती है। 14 में से 16 सम्यक मिथ्यात्व के जगन्य और अजगन्य अनुभव के उद्गरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। आठ कषाय और 7-9 कषायों के जघन्य अनुभाग के उद्गीरकों में लोक के असंख्यात भाग और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया, क्योंकि ये आठ कषाय कौन से
प्रत्याख्यान
और संग्रह
सॉरी।
और ये किसको जघन्य होगा?
चौथे से पांचवें
नहीं, संयुक्त तब होगा, तो उस काल में तो मारणांतिक करेगा तो चौथे चरण में करेगा। अजगन्य अनुभाग के उदीरकों ने सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। अजगन्य तो पूरे एक इंद्रिय में भी है और अन्य भी जो जीवों को अजगन्य होता है उनका मारणांतिक भी होगा, उनका अपना क्षेत्र भी होगा। स्त्रीवेद और पुरुषवेद के जघन्य अनुभाग के उद्गीरकों ने, अब यहाँ स्त्रीवेदों में ही बात चल रही है, लोक के असंख्यात भाग उनका रहने का, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। क्योंकि त्रिवेंशों में भी स्त्रीवेद पुरुषवेद के जघन्य उद्गीरना कब होगी?
पांचवें
स्थान वाला जो है जब विशुद्धि ज्यादा होगी। अजघन्य अनुभाग के उद्गीरकों ने लोक के असंख्यात भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। एक इंद्रिय में मानांकित करने वाले ले लिए पंचेंद्रिय तीरियन चतरिक में मिथ्यात्व और आठ कषायों के जघन्य अनुभाग के उद्गीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी लोकाशन। क्योंकि जो तीरियंशों में हुआ वही बात यहाँ है, तीरियंशों में भी इन्हीं की अपेक्षा जघन्य बताया था। अजगन्य अनुभाग के उद्गीरकों का लोक के असंख्यात विभाग उनका वर्तमान का और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन है, ये तो उनके मारणांतिक की अपेक्षा। तीरियंश में तो अजगन्य तो क्षेत्र में भी पूरा लोक लिया, क्योंकि वो एक इंद्रिय भी करते हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग सामान्य तीरियंशों के समान है, क्योंकि सम्यक में तो जघन्य उपगत उसके वेदक वाले को लेना है, तो उसमें
लोकासन का
लोकासन। और योनिमति में तो सम्यक का जघन्य कब होगा?
पांचवें गुण स्थान में सर्वा विशुद्धि
वो भी लोक का आसन का भाग है। परंतु इस योनिनी में सम्यक्त्व का जो स्पर्शन है, क्षेत्र तो लोक का संख्या का था, परंतु स्पर्शन में तो उनके 14 में से 6 भाग
होगा
जब सम्यक्त्व का जगत है, क्योंकि वो मारणांतिक करेंगे। पृथ्वी के वेदक में तो मारणांतिक गठित नहीं होता,
नहीं होता।
नीचे है क्या पढ़ा नहीं मैंने, आगे पढ़ेंगे। शेष प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के उद्गीरकों ने लोक के असंख्यात भाग वर्तमान का और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, यही जो पांचवें गुणस्थान वर्ती विशुद्धि वाले लेना। अजघन्य अनुभाग के उद्गीरकों ने लोक के असंख्यात भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। इतनी विशेषता है, हाँ यहाँ आ गई बात, योनियों में सम्यक्त्व के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उद्गीरकों में लोक के असंख्यात भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। सोच सकते हैं ना, क्योंकि उनका जगह में छोटे छोटे वाले को नहीं है, पांच चरण में जब विशुद्धि ज्यादा है तब, और उस काल में माना ठीक होगा तो चौदह चंद्र तक होगा, तो चौदह में से छह राज्य स्वभाग समान हो जाता है। अभी सत्ता न देखते पंचेंद्र तीरंज अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में सब प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के उद्गीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी लोक का संख्या कर
और पूरा लोक में सर्वलोक की हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे तो
कोई होगा ना पूरा लोक। देखो जघन्य के लिए
वो तो मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि में इतनी विशुद्धि के साथ पूरे लोक में जा सकता है।
अजगण्य के लिए सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श, तो जगण्य के लिए नहीं, उनका क्षेत्र देखो ना, केवल इसी प्रकार चीजें जो हमें जानना चाहिए इतनी बात जगन्य में।
तो ये तो पंचेंद्रिय चीजें अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त की बात है ना।
हाँ मात्र पंचेंद्रिय मनुष्य अपर्याप्त, जगन्य के लिए सर्व लोक लिया, जगन्य के लिए लोक का असंख्य प्रभाव है। क्षेत्र अलग से बताया नहीं था ना,
ये लोक का असंख्या प्रभाव हो जाएगा जगन्य के लिए, अजगन्य का लिया है ना पूरा लोक,
पूरा लोक लोक जगन्य उनकी ज्यादा विशुद्धि तक की बात है। उत्कृष्ट में तो कोई सवाल ही नहीं, जैसे कंप्लेट ज्यादा है तो एटीएम भी जा सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे मनुष्य त्रिक में सम्यक और समय मिथ्यात्व का भंग क्षेत्र के समान है। सम्यक्व में तो जगन्य है उसका
लोक का संकल्प,
हाँ बिल्कुल सत्य बोले सपना करने लोक का संकल्प होगा, समय मिथ्यात्व में भी होता है। शेष प्रकृतियों से जगन्य अनुभाग के उद्गीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, वो भी लोक का संकल्प होगा जगन्य का।
ये सम्यक्व में जगन्य वाला सात राज्य प्रमाण भी ले सकते हैं, नहीं
सम्यक्व का जगन्य सात राज्य कैसे लेना,
कृतकृति वो सपना कर रहा है और उसने मारणांतिक किया ऐसा हो सकता है,
मनुष्य अवस्था में मारणांतिक करने वाला
कृतकृति वह सकते
सर्वा सिद्धि में जाने वाला
हाँ।
है ना, पर तो मनुष्य लोक में से जाएगा ना, सर्वा सिद्धि भी एक कला के
अच्छा लोक का आसन क्या
था, यहाँ ढाई लाख की लोक का आसन क्या था, यानी पूरा रत्नाली प्रमाण एक राज्य एक राज्य एक नहीं है। अजगण्य अनुभाग के उद्गीरकों ने लोक के असंख्यात विभाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया, शेष प्रकृतियों के बारे में बात कर लिए, अन्य प्रकृतियों के अन्य अजगण्य के भी, ये तो वहाँ तो पूरे हुए लोग भी कहीं पर खाना नहीं चाहते। देवों में मिथ्यात्व 16 कथाएं और 8 9 कथाएं थे। जगन्य अनुभाव के उद्गीरकों ने लोक के असंख्यात भाग और त्रसन आदि के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण चित्र का स्पर्शन किया। अजगन्य अनुभाव के उद्गीरकों ने लोक के असंख्यात भाग, त्रसन आदि के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 9 भाग प्रमाण चित्र का स्पर्शन किया। ये तो
प्रागवार
ने मारणांकित करने की अपेक्षा से दिया। सम्यत्व के जगन्य अनुभाग के उद्गीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्षेत्र के समान ने लोक का स्पर्शन। प्रेरणाबेन मेरा प्रश्न है आपसे, इसको सम्यत्व का जगन्य अनुभाग के उद्गीरकों का स्पर्शन ज्यादा क्यों नहीं लिया? यहाँ 8 की अपेक्षा है और वो देवों में कभी घटित होगा और ये मनुष्यों में से आने वाले सपना के लिए, इसलिए ऐसा भी नहीं कहते वो तो अपेक्षा भी नहीं लगा सकते। अजगण्य अनुभाग के उद्गीरकों ने सम्यक्त्व का ही अजगण्य, लोक के असंख्यात भाग और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया, ये उनका विहार है। और मारणांकित करेंगे तो ये
मनुष्य में आएंगे,
तो वो 8 राज्यों में तो कवर हो गया उनका। समय मिथ्यात्व के जगन्य और अजगन्य अनुभाग के उद्गीरकों ने लोक के असंख्यात भाग और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। इसी प्रकार सौधर्म और ईशान कल्प में जानना चाहिए, क्योंकि सौधर्म और ईशान
3.5
भाग प्रमाण जाते हैं, 3.5 वाला भवन त्रिकोण। भवनवासी अंतर और ज्योति के देवों में मिथ्यात्व 16 कथाएं 8 9 कथाओं के जघन्य अनुभाग के उद्गीरकों ने लोक के असंख्यात भाग तथा त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5 भाग स्वयं गमन करे और 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन
किया।
विहार 8 भाग प्रमाण तो विहार को अन्य जीव उनको ले जाए तो मारणांतिक में तो अजगण्य मिलेगी। जगन्य में
अच्छा, इधर गणित की
बात है। जगन्य में अगर मारणांतिक करेंगे तो एक ही में कैसे करेंगे?
नहीं करेंगे,
क्योंकि समय दृष्टि है और विशुद्धि के काल में जाए
मध्य लक्ष्य
तो अजगण्य में वो मारणांतिक गति, इसलिए अजगण्य में बता रहे हैं। अजगण्य अनुभाव के उद्गीरकों ने लोक के असंख्या के भाग कृष्ण नाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5 भाग, कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 9 भाग समान क्षेत्र का स्पर्शन। हाँ, 9 भाग वो माना, 14 में ईशान में भी दिया था, परंतु यहाँ विशेषता क्या है, 3.5 8 और 9 ऐसे अलग अलग तीनों ही भेद बताए। अब भवनवासियों में ही सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उद्गीरकों ने लोक के असंख्यात भाग, अब यहाँ सम्यक्त्व का जो जघन्य होगा वो तो कुछ कुछ से यहाँ
चौथे में
तो चौथे की जब
कुछ कुछ नहीं होगा,
चौथे में
मिथ्यात्व
का जघन्य होगा। सम्यक्त्व का सम्यक्त्व प्राप्त किया है उसकी विशुद्धि बढ़ी है उस काल तो वो लोक का असंख्या का भाग तथा प्रश्नाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5 भाग और कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। वहाँ विहार तो हो सकता है परंतु उस जीव के मारणांतिक होगा तो मनुष्य में होगा, तो इसलिए वो अन्यत्र जो 9 भाग प्रमाण दिया है वो यहाँ गठित
नहीं है।
तो में दृष्टि है वो एक इंद्रिय में मारना चाहिए तो। और दूसरी बात भी शुद्धि है अच्छा न देखो। सनत कुमार कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में सम्यक के जघन्य अनुवाद के उदीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है।
लोक का संकेत,
हाँ लोक का संकेत, क्योंकि ये तो मनुष्य की सपना करके आने वाले थे। अजगण्य अनुभाग के उद्गीरकों ने लोक के असंख्यात भाग रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। मैंने वो विहार करने वाले थे और बाकी उनका अपना क्षेत्र है। शेष प्रकृतियों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उद्गीरकों ने लोक के असंख्यात भाग और रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। अब यहाँ पर मिथ्या दृष्टि हो तो भी अभी एक नहीं जाते तो सौदर मैदान करके एक याद किया था तो 9 भाग प्रमाण यह मात्र विहार की अपेक्षा लेनी है और वो भी कहाँ तक सहस्रार तक क्योंकि वो तो
मनुष्य नहीं आए
गमन मनुष्य लोग में जन्म लेने की बात नहीं रही। जन्म लेने की अपेक्षा लगाएंगे तो असंख्या का अभाव होगा।
हाँ लोग का असंख्या का और आनंद
परंतु यहाँ बिहार की अपेक्षा मध्य लोग करेंगे क्योंकि 14 बार में से 6 बार भी आनंद से भी हमने पढ़ी था है
कि आनंद वाले बिहार करेगा तो मनुष्य लोग में आएंगे कि पूरे मध्य लोग में कहाँ पे
मध्य लोग में कहीं पर
कहीं पर भी जाएंगे
सभी असल का बीच समझा कहीं पर भी जाएंगे इसलिए 14 में से 6 भाग प्रमाण हो सकते बिहार बिहार की अपेक्षा ही घटित होगा। मारना की करेंगे तो मनुष्य में ही करेंगे नियम से मिथ्या दृष्टि भी तो बीच वाले 45 लाख योजना करेंगे
लोकाशन
का लोकाशन का प्रभाव। अभी तो हम सनत कुमार की बात कर रहे थे अभी तक इन्हें शेष प्रकृति उनके जघन्य हो या अजघन्य हो वो लोक का असंख्या तो अभाव और कुछ का मार भाग वहाँ विहार की अपेक्षा दिया। अब आनंद से लेकर बात करेंगे आनंद कल्प से लेकर अच्युत कल्प तक के देवों में यहाँ ग्रहवेद को भी नहीं लिया क्योंकि यहाँ विहार की अपेक्षा लगाएंगे। सम्यक्व के जघन्य अनुभाग के उद्गीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। सम्यक्व का जघन्य तो कृतकृत्य वाले के होगा वो तो लोक का असंख्या का अभाव ही होगा। अजगण्य अनुभाग के उद्गीरकों ने लोक के असंख्या भाग ये रहने का रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग समान क्षेत्र का स्पर्शन किया है ये विहार के अपेक्षा। विहार की अपेक्षा और कोई अपेक्षा लगेगी यहाँ पर और कोई जन्म ये तो मनुष्यों में आएंगे तो लोग का असंख्या तो भाग होगा
विहार की अपेक्षा ही लगेगी
वो तो पर
वो भी मनुष्य ही आएगा एक्सपीरियंस सोलह सौ से उत्पन्न हो सकते हैं
एक्सपीरियंस से जा सकते हैं ना पांच सौ गुना। अभी तो हमने देखा एक्सपीरियंस हमें तो गठित किया था एक्सपीरियंस से मारना भी करते हैं
करते हैं
तो आनंद में आने वाले उपवास का पहला समय स्वयं भ्रमण से जा रहे पांच सौ गुना स्थान वाले
तो उपवास की अपेक्षा भी छह राजू ले सकते हैं
बिल्कुल क्योंकि वहाँ जाने वाले सीरियन से भी जाते ही मनुष्य में से जाने वाले को नहीं देते
नहीं लेना
सीरियन से जो है वो पूरे राज्य तक सैबू रमन तक है तो उनकी अपेक्षा नहीं जाएंगे
तो संख्या तो भाई
वो तो
लोग का संख्या
कवर नहीं त्रस नाली को पूरा चौड़ाई उसकी कवर नहीं है
हाँ असंख्या लोक का असंख्या पता है
और ये संख्या योजन है ये संख्या योजन है और एक राज्य तो असंख्या असंख्या तो भाग है ये राज्य का भी असंख्या तो भाग होगा किसमें
मनुष्य की अपेक्षा असंख्या पा गया है इधर
का संख्या तो अगर वो वायु कैको में आता है, हम
हाँ,
पहले देख
पाँच का
शेष प्रकृतियों के अनंत में बात कर रही है। शेष प्रकृतियों के जगन्य और अजगन्य अनुभाग के उदीरकों ने लोक के असंख्यात भाग और कृष्ण आदि के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। जगन्य रजगन्य दोनों ले ऊपर के देवों में क्षेत्र के समान भंग है।
लोक का संक्षेप
इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना है। क्षेत्र के समान ने लोक का संख्या करवा, क्योंकि वो ग्रहवे का जो विहार
मनुष्य मनुष्य
विहार नहीं करते, मानना की करेंगे तो
मनुष्य में आएंगे।
अब कालानुगम, एक काल एक बार बताया था ना,
ये नाना की उनकी अपेक्षा
है, नाना की उनकी अपेक्षा बात कर रही
अभी कल निकल गए थे ना, बीच में हुआ ना,
अब कहाँ है 91 में हमने 19 लिया
16 नंबर
भागा भागा अनुगम के लिए 16 था, परिमाण के लिए 17
91 पे 18 नंबर लिया है 18 और 19
क्षेत्र के लिए 18 स्पर्शन के लिए 19 यहाँ संज्ञा लिया सर्व नौ
क्षेत्र हो जाते हैं,
14 हो गए और फिर 3 आ जाते हैं वो अपने पर बंद हो
जाते हैं, इसके बाद में स्पष्ट क्षेत्र और स्पर्श काला अनुगम
और अंतर और जब 3 का पावर
आप पास करते हैं, अभी माइक उनको दे देते
कभी हम कालानुगम देखेंगे, नाना जी उनकी अपेक्षा काल की बात करेंगे। ये दो प्रकार का है जगन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओवर आदेश ओग से। अब पहले उत्कृष्ट की बात करते हैं, अभी तक हम
जगन्य के अधेय उल्टा सत्म है संकलित
मिथ्यात्व सम्यक्त्व कथाएं और नौ नौ कथाओं के उत्कृष्ट अनुवाद के विवरकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्या से भाग प्रमाण। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट का काल कितना देखा था हमने, एक समय और
एक दो समय,
दो समय यहाँ नाना जी उनकी अपेक्षा आवली का असंख्या करवा, एक दो समय में तो
असंख्या जीव करेगा,
एक दो या दो को कुछ फर्क नहीं, और नाना जी उनकी अपेक्षा आवली का अनुत्कृष्ट अनुभाग के उद्गीरकों का काल सर्वदा है। नाना जी उनकी अपेक्षा हमेशा वो
रहेगा,
हाँ हमेशा ही रहेगा अनुत्कृष्ट वाले सम्यक मिथ्यात्व के अभी ख्याल आ रहे हैं ना, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कक्षा उत्कृष्ट संकेत और अनुत्कृष्ट
तो तुम क्या दृष्टि
सबके होंगे, सबके होंगे इसलिए उसको सदा काल दिया और उत्कृष्ट तो
अवली
क्या
पंचेंद्र में ही होगा,
अवली का संख्या ज्यादा एक के बाद एक के बाद एक के बाद किसी को होगा तो अवली क्या ना। समय मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उद्गीरकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अवली की संख्या से भाग प्रमाण है। मैंने समय मिथ्यात्व में से
मिथ्यात्व में जाने वाले
अंतिम समय अनुत्कृष्ट अनुभाव के उदीरकों का जगन्य काल अंतर मूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंतर क्योंकि ये सांतर मार्ग है। एक जीव होगा तो अंतर मूर्त तक तो रहेगा ही रहेगा, एक के बाद कोई आता रहेगा,
तो
वो मार्गना का उत्कृष्ट काल लिया है। विशेषा यहाँ सभी प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के उद्गीरकों का उत्कृष्ट काल जो आवली के असंख्या से भाग प्रमाण कहा है तो उसका आशय ही इतना है। यदि नाना जी निरंतर उक्त सभी प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की उद्गीरना करते रहे तो उस सब काल का योग आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ही होगा, इससे अधिक नहीं। तथा समय निख्यातों के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उद्गीरकों का जघन्य काल भी अंतर्मूलत है। अब यदि नाना जी संतान के त्रुटित हुए बिना, और त्रुटित संतान का है ना, यानी वो समय निख्यातों में बस जीव है एक के बाद एक पूरा हुआ उसका काल उसके पहले दूसरा वहां, यानी बीच में कोई गैप
नहीं,
त्रुटित हुए बिना समय निख्या तो गुण को प्राप्त होते रहे तो उस काल का योग पल्ले के असंख्या से वहाँ प्रमाण में होता है। अतः यहाँ समय निख्या तो के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उद्गीरकों का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात असंख्य हुआ एक तो निकाल देना असंख्यात वहाँ प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है। आगे गति मार्गना के अवान्तर वेदों में भी अपनी अपनी विशेषता जानकर काल गठित कर लेना चाहिए। अब आदेश से कहें, आदेश से सब नारकी सब तीर्यंश देव और भवन वह करो भवन भवनवासियों से लेकर अपराधी सीमान तक के देवों में जिन प्रकृतियों की उदीर्णा होती है उनका भंग ओह के समान है। जिन प्रकृतियों की उदीर्णा होती लिखने का क्या प्रयोजन है?
नपुंसक व्यक्ति को कहाँ पे
देंगे? नारकी में स्त्री पुरुष व्यक्ति की उदीर्णा नहीं होगी,
यहाँ पे नपुंसक व्यक्ति
और देवों में नपुंसक व्यक्ति की उदीर्णा नहीं,
और ऊपर के स्वर्ग में सब मिथ्यात्व की और अनंत है। अनंत अनुमति की दिन नहीं होगी
तो जो जिनकी हो रही है उनका भंग ओर के समान है, यानी वो काल की अपेक्षा बात करें। मनुष्य त्रिक में सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के उद्गीरकों का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल संख्या समय, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा दो समय देखिए उत्कृष्ट का लगातार काल, तो यहाँ जीव कितने वहाँ संख्या है उसमें से कुछ करेंगे तो संख्या समय। नाना जी उनकी अपेक्षा बात कर दी, अनुत्कृष्ट अनुभाग के उद्गीरकों का काल सर्वदा है। इतनी विशेषता है कि सम्यक निख्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उद्गीरकों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मूर्त है, क्योंकि एक जीव करे और यहाँ संख्या जीव करे तो संख्या अंतर मूर्त ने अंतर मूर्त कर लिया। मनुष्य अपर्याप्तकों में सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के उद्गीरकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्या से भाग प्रमाण, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा दो समय गठित होते हैं यहाँ आवली का असंख्या का भाव होगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उद्गीरकों का जघन्य काल एक समय है, एक समय इसलिए कि वो
उत्कृष्ट हुआ
उत्कृष्ट करके फिर अनुत्कृष्ट समय तो
एक समय हो जाएगा।
सॉरी अंतर काल की बात कर रही हूँ, अनुत्कृष्ट का काल है उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट हुआ फिर उत्कृष्ट, मैंने उल्टा बताया, मैंने अंतर बताया यहाँ काल की बात कर रही हूँ। और उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि उस मार्गना का ही काल ले लेना है। सर्वासिद्धि में सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभव के उद्धरकों का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्या समय है। वहाँ भी एक दिन की अपेक्षा दो समय रहेंगे तो नाना जी उनकी अपेक्षा संख्या समय क्योंकि वहाँ संख्या थी। अनुत्कृष्ट अनुभव के उद्धरकों का काल सर्वदा है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए विशेषकर मनुष्य त्रिकोण सर्वा सिद्धि के देवों की संख्या संख्यात है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभव के उद्धरकों का उत्कृष्ट काल संख्या समय तथा समय मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभव के उद्धरकों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुख कहा। ये समय मिथ्यात्व का है वो मनुष्य में ही समझना मात्र क्योंकि सर्वा सिद्धि में होता ही नहीं। यहाँ कथा के आगे ब्रैकेट में तो मनुष्यों में समय मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट का अंतर मनुष्य अपर्याप्त एवं सांतर मार्गणा है। इनमें इसके उत्कृष्ट काल को ध्यान में रखकर यहाँ सब प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभव के उद्धरकों का उत्कृष्ट काल पल्लवों के असंख्या के भाग प्रमाण का शेष प्रथम रश्मि बहन ख्याल में आ रही बात। अब जगन्य की बात सोचिए उत्कृष्ट में यही बात लेना है कि एक युग की अपेक्षा
एक समय में
अनेक जीवों की अपेक्षा
यथावली के
असंख्या जीव करते
हैं
वहाँ अवली का असंख्या होगा और जहाँ संख्या भी है
संख्या
जघन्य का प्रकरण निर्देश दो प्रकार का है। ओवर आदि ओव से सब प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के उद्धरकों का जघन्य काल एक समय में और उत्कृष्ट काल संख्या समय तो क्या है उत्कृष्ट में तो एक जीव की अपेक्षा दो समय और नाना जीवन की अपेक्षा अवधि का समय यहाँ अभी वो बात नहीं है।
यहाँ पे अनंत अनुभव की देते यही लागू पड़ेगा
अभी विशेषता को छोड़ने तो बात नहीं होता। अभी यहाँ क्या बात पहले तो जनरल स्टेटमेंट थी उत्कृष्ट और जघन्य में क्या डिफरेंस है उसकी बात हम देखते हैं। तो जघन्य के लिए क्या बताया उन्होंने
संख्या समय समय
से संख्या अजगन्य अनुभाग के उद्धरकों का काल चलेगा। इतनी विशेषता है अभी जो सांतर मार्ग ने समय मिलता तो उसमें अनुत्कृष्ट भी सर्वदा तो नहीं अजगन्य भी सर्वदा नहीं कहेंगे। सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के उद्धरकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्या के भाग प्रमाण है। क्योंकि उसमें से मिथ्यात्व में जाने वाली जीव है जघन्य कब होगा सॉरी चौथे में जाने वाली जघन्य चौथे भी उत्कृष्ट की बात नहीं जघन्य की बात सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक को प्राप्त करने वाले को अंतिम समय में जघन्य होगा। तो एक की बात करेंगे तो उत्कृष्ट काल आवली का आशंका का भाव और अजगण्य अनुभाग के उद्धरकों का जघन्य काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्या के भाग। अब आपने पूछा
नहीं वो तो मेरे मिल गया आपसे क्योंकि मनुष्य में ही होगा ना वो जो पहले अरे पहले से सातवें में जाने वाले थे
पहले से क्या है जो चालू विषय अगर नहीं समझे तो उसमें अन्य अन्य प्रकृतियों के अपेक्षा समझने में सभी लोग जब तक नहीं समझते तब हम दम करके आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वो कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाए ना। हमें पहले हम उत्कृष्ट और जघन्य में क्या अंतर है उसके बाद उत्कृष्ट लगातार आवली का संख्या का भाव और जघन्य को संख्या की समझ हर एक की बात करते मिथ्या तो का जघन्य कब होता है और अनंत अनुभवी का पहले से साथ
मनुष्य ही करेगा
तो ओग में कहो या मनुष्य में कहो एक ही बात जो ओग से भी वही बात है अनुत्तम की बात करेंगे तो नहीं रहेगी, तो मिथ्या तो अनंतता में रहेगी। अभी समत्व का जमाने कब होता है, वो छोटे छोटे भी जाते हैं, वो भी कितने
संख्या से
वो समत्व की बात है। समय मिथ्या तो थी तो उन्होंने बता दी, वो तो तीसरे में से चौथे में जाने वाले हैं। और यहाँ ओक की बात कर रही है, चारों बजे की भी है, तो वहाँ वो अवधि का आसन करना पड़ता है मात्र। अभी अन्य जो अप्रत्याख्यान है वो चौथे से सातवें में जाने, वो भी संख्या कर रही है। प्रत्याख्यान है पांचवें से सातवें में जाने वाले, वो भी संख्या। उसके बाद जो कपड़ा के लिए उस जगह में होते हैं वो
संख्या
थी। और उसे सब प्रकृतियों के जगन अनुभाग के विरखन का काल एक समय, यह स्पष्ट ही है। मैंने एक जीव की अपेक्षा रखी, यदि नाना जी संतान के त्रुटि हुए बिना इनकी जगन अनुभाग उदीर्ण करे तो सब काल का योग सम्यक मिथ्यात्व को छोड़। इसके बाद उन्होंने अलग बता संख्या समय ही होगा, इसलिए यह उनके जगन अनुभाग के उद्योगों का उत्कृष्ट काल संख्या समय कहा। मात्र सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा यह काल आवली के असंख्या के भाग प्रमाण प्रदान हुआ प्रमाण बन जाता है। इसके जगन अनुभाग उद्दीरकों का उत्कृष्ट कार्य आवली के असंख्या पर भाग प्रमाण कहा है शेष कथन सुगम। अब मनुष्यों में तो समय मिथ्यात्व के लिए भी
संख्या समय है,
बाकी अन्य तरह तो असंख्या ही होते हैं। मनुष्य जो दूसरे गुणस्थान वाले हैं संख्या से, और उसमें से चौथे में जाने वाले
संख्या की
नाना जी वो भी संख्या पर व्यक्ति है। मनुष्य पर्याप्त संख्या की होगी, मनुष्य की बन तीसरे की जो टोटल संख्या है चारों व्यक्ति वो तो असंख्या। मनुष्यों में कितने होते हैं
बाहर करो तीसरे गुणस्थान में टोटल जीव कितने 52 करोड़ है नहीं 104 करोड़ 104 करोड़
पांचवे गुणस्थान में 13 करोड़
हाँ
दूसरे में 52 करोड़
हाँ तीसरे में 104 करोड़ और चौथे में 700 करोड़
मैक्सिमम संख्या दोस्तों की संख्या सही है। विशेषा पढ़ रहे थे लास्ट, इसलिए इसके जघन्य अनुभाग के उद्रकों का उत्कृष्ट काल आवली के असंख्या के भाग प्रमाण कहा है। वो उसकी अपेक्षा बता दी शेष कथन सुगम आदेश से अब बताएंगे। आदेश से नारकियों में सम्यक और समय मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। यानी सम्यक में कितने होंगे जघन्य करने वाले
संख्या
से
एक समय से स्वेच्छा संख्या
हाँ उसका काल है संख्या समय, यहाँ संख्या नहीं चल रही समय चल रही। और समय मिथ्या में
एक समय के लिए क्या अवली का संख्या क्या था ये तो समय लिखा तो हमें वही
जीवन की अपेक्षा काल
एक समय से अवली का संख्या का भाग हो जाएगा ना यहाँ पे भी
जगन्य अनुभव की जगन्य की करने तीसरे से चौथे क्योंकि नरक में तो वही कहीं पर भी तीसरे से चौथे में जाने वाला ही है तो एक समय से आवली का
असंख्या
का शेष प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के उजरकों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्या के भाग समान है। क्या अन्य को देखो सम्यक में क्या लिया था
वहाँ पे तो संख्या का एक समय और संख्या समय ही लिया,
एक समय
जगन्य
संख्या सबके लिए लिया, सब प्रकृतियों के जगन्य के लिए जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल संख्या समय लिया।
यहाँ पे अवली का संख्या तो अपग हो जाएगा ना, बाकी
लिया है देखो
एक समय से लेके अवली
से शेष आदेश में सेकंड लाइन शेष प्रकृतियों के जगन्य अनुभाग के उद्गीरकों का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्या के बाद हम सोचते हैं शेष में कौन कौन से अंतर का उन्होंने तो ओके समान कह दिया ना। हाँ हाँ होने लगा अलग इसलिए किया कि शेष प्रकृतियों को अलग निकाल सकते, शेष प्रकृतियों में वहाँ क्या बताया था संख्या समय मिथ्यात्व का जगन में कब होता है पहले से सातवें में जाने वाले
नहीं ये नारके में पहले से चौथे में जाने
मैं ओग से पहले बात कर रहा हूँ ओग में और यहाँ क्या डिफरेंस है इसकी बात कर रही हूँ। ओग में जो संख्या समय बताया है वो तो पहले से सातवें में जाने वाले कौन से हो गए तो संख्या की है। अब नारकियों में क्या होगा पहले से चौथे में जाने वाले वो भी प्रथम उत्सव समय एक के बाद एक के बाद एक तो वो तो आवली की असंख्या के बाद की बात। अब अनंतानुबंधी का वही है
पहले
उसके बाद सब में वही लगा ना अभी और प्रत्येक अंत तो सब में दूसरी
जगह
उसके लिए तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है दूसरे गुणवत्ता नहीं उसके ऊपर चले ओग में तो उसको भी हमने संख्या दी क्योंकि वो चौथे से सातवें में जाने वाले प्रत्याख्यान को भी पांचवें से सातवें में वो सब संख्या थे और यहाँ तो संख्या नहीं होगी यहाँ डिफरेंस किस में समय नीचा तो नहीं शेष प्रकृतियों में इसलिए उनको अलग निकाला उनको तो अवक से समान रखा और बाकी प्रकृतियों को अलग निकाल के एक समय रावली का संख्या प्रभाव और अजगण्य अनुवाद के उद्गीरकों का काल सर्वदा है ये तो जाहिर है अजगण्य वाले तो हमेशा हो गए वहाँ पर। इसी प्रकार पहली पृथ्वी इसी प्रकार इन्हें सम्यक होता जो लगाता था तो पहली पृथ्वी में होगा पहली पृथ्वी सामान्य तीर्यन पंचेन्द्र तीर्यन से द्विक क्योंकि योनिमति में वो नहीं होगा सम्यक होता जगन्य संख्या समय वाला सामान्य देव और सौधर्म कल्प से लेकर नौ ग्रहवेग तक के देवों में जानना चाहिए। अब भवनत्री को भी यहाँ से निकाल दें इतनी विशेषता है अपनी अपनी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए जो जहाँ उसकी उसका होता है जो जिसकी उद्दीना होगी उसको समझ। अब ये ग्रुप अलग बता रहे दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकी यानी जहाँ वो सम्यक प्रकृति का जगन्य कुछ वेदक की अपेक्षा
नहीं होता है आवली का
जगन्य सर्व
सर्व
विशुद्ध नारकी में तो चौथे गुण स्थान वाले विशुद्ध लेना योनि में तीन में पांचवें गुण वाले विशुद्ध लेना भवनवासी अंतर ज्योतिषी उनके
चौथे गुण स्थान
विशुद्ध लेना अरे उन्हें तो समय निश्चा छुपा लेना सम्यक मिथ्यात्व का भंग तो ओके समान यानी सम्यक मिथ्यात्व का भंग यानी उसका जगन्य के लिए तो
चौथे में जाने के
चौथे में जाने की अपेक्षा अवली का संख्या प्रभाव तो घटित होगा परंतु शेष प्रकृतियों के जगन्य अनुभाग के उद्गीरकों का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अवली के असंख्या प्रभाव समान है यानी यहाँ सम्यक प्रकृति को भी शेष प्रकृतियों के साथ ले
लिया।
पहले पृथ्वी ने सम्यक्त्व को तो अलग रखा था यानी सम्यक्त्व प्रकृति का लगातार से नाना जीवन की अपेक्षा वो संख्या था सपना करने वाली संख्या तो भी और शेष प्रकृतियों को अलग रखा। अब यहाँ नीचे के नरकों में या योनिमति में गौणवासी वगैरह में सम्यक प्रकृति को भी शेष प्रकृति के साथ रखा क्योंकि उसका जगन्य
वो किसी वहाँ होता ही
नहीं है सर्व विशुद्ध जो अधिक प्राप्त करेगा सबकी काम तो इसलिए उसको उनके साथ होगा आवली का संख्या करेगा। अब अजगण्य अनुभाव के व्यर्थों का काल सर्वदा पंचेंद्र सूर्यों का पर्याप्त कौन है सब प्रकृतियों के जगन्य अनुभाव के विवेकों का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्या के राम समान एक के बाद एक कोई जगन्य करता है एक जीव की अपेक्षा हमने दो समय अजगन्य अनुभाव के विवेकों का काल सर्वदा है विशेषा प्रथम पृथ्वी पंचेंद्रिय तीरियम से द्विक द्विक में कौन लेना
सामान्य
पंचेंद्रिय तीरियम
और
पंचेंद्रिय तीरियम
योनि में और योनि में
तीरियम योनि में क्या अलग द्विक में नहीं लेना
अच्छा द्विक बताए अच्छा
तो प्रथम पृथ्वी यानी जहाँ कुछ कुछ उत्पन्न होते हैं उसकी बात प्रथम पृथ्वी पंचेंद्रिय तीरियम से द्विक सामान्य देव और सौधर्म कल्प से लेकर नव ग्रवे सबके देवों में कृतकृत्य वेदक समय जिसकी जीव मर कर उत्पन्न होते हैं इसलिए इनमें सम्यक का भंग ओघ के समान बन जाता है परंतु पूर्वोक्त शेष मार्गणाओं में कृतकृत्य वेदक समय जिसकी जीव मर कर उत्पन्न नहीं होते इसलिए इनमें सम्यक की अपेक्षा काल प्ररूपणा अन्य प्रकृतियों के समान बनने से उस प्रकार से कही है शेष कथन सुगम मैंने सामान्य हाँ पंचेंद्रिय से पर्याप्त नहीं का पंचेंद्रिय से पर्याप्त देखो एक तो पंचेंद्रिय
सामान्य
ये पर्याप्त है ने नपुंसक वेदी पुरुष वेदी के स्त्री वेदी उसकी अपेक्षा किए बिना हमने पंचेंद्रिय के लिए और दूसरा पंचेंद्रिय पर्याप्त यानी पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी हाँ हर एक में पंचेंद्रिय लगा और तीसरा है पंचेंद्रिय तीरियंश
योनि में तीरियंश नहीं होगा
हाँ उसको छोड़ा है क्योंकि उसमें वो
कृतकृत्य वेदक नहीं होती
तो यहाँ ये नव ग्रेवेट तक के देवों में कृतकृत्य ऐसा क्यों रखा ऊपर तो भी जाते हैं
ऊपर भी है पर यहाँ
तो यहाँ ये लिमिट क्यों बताए इसलिए कहना था कि यहाँ हमको समय मिथ्या प्रति भगवान बताए
ऊपर नहीं हो गए
ऊपर नहीं हो गए बात किसकी करते हैं उनको एक रूप बना के उसमें एक कथन करना तो समय मिथ्या होगा तो यहीं तक प्रतीत होगा ऊपर तो सारे समय दृष्टि है इसलिए उनका ग्रुप अलग है इसलिए समय का भंग ओक के समान बन जाता है परंतु पूर्वोक्त शेष मार्गणाओं में कुछ कुछ वेदक समय जिसकी जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते पूर्वोक्त ने ऊपर बताया था ना कि दूसरे से लेकर सातवें दूसरे सत्य नाथी योनि सीरियन वो भवन से जिनमें वो नहीं उत्पन्न इसलिए इनमें समय की अपेक्षा काल प्ररूपणा अन्य प्रकृतियों के समान बनने से अन्य यानी उसका जो अधिक से अधिक काल आवली का असंख्या का भाग बने गगन्य होने का नाना जीवन के अपेक्षा काल उस प्रकार से कहिए शेष कथन सुगम ख्याल में एक ध्यान रखी बात हाँ बात बतानी है कि इसलिए सम्यक्व का भंग ओघ के समान बन जाता है ओघ के समान है वो जीव कितने हैं तो संख्या कुत्ते वेदक वाले एक के बाद एक वहाँ जन्म लेंगे
संख्या की होगा उसको
अब तक मनुष्य नहीं करने वाले हैं ना और अन्य मार्गणों में जो समय चुका है
आवली का संख्या
है
सर्वाधिक
है एक के बाद एक के बाद एक जीव को होगा तो आवली का संख्या प्रभाव मनुष्य कृष्ण और उसके समान बन गए। इतनी विशेषता है कि समय विख्यात के जघन्य अनुभव के उद्देशकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्या समय है और अजघन्य अनुभव के उद्देशकों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर है।
अजघन्य का उत्कृष्ट काल के अंतर मुझे बता
मनुष्य अन्यत्र कितना देखा पल्ले का आसन करता है।
अच्छा ये समय में क्या करते हैं
एक जीव की अपेक्षा अंतर में
तो संख्या जीव की अपेक्षा
संख्या के जीव हो करेगी तो वो भी अंतर है। मनुष्य अपर्याप्त को में सब प्रकृतियों के जघन्य अनुभव से जीवन का जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्या के भाग समान है क्योंकि वहाँ तो असंख्या जीव है। अजघन्य अनुभव के उद्दीरकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्या के भाग समान है क्योंकि ये शांतर मार्गना है नाना जीवों की अपेक्षा अजघन्य का तो इतना काल बन सकता है। विशेषता मनुष्य त्रिकता प्रमाण संख्या होने से यहाँ समय निख्यात के जघन्य अनुभव के उद्दीरकों का उत्कृष्ट काल संख्या समय तथा अजघन्य अनुभव के उद्दीरकों का उत्कृष्ट काल अंतर में उत्साह शेष कथन सुबह अनुदित से लेकर अपराधिक तक के विमान तक के देवों में वहाँ हमने ग्रेवे तक ही देखा था सम्यक 12 कथाएं और 7-9 कथाओं का भंग आनंद कल्प के समान है। आनंद का कहाँ अलग से
हाँ सातवें ग्रेवे तक बताया ना 9 ग्रेवे तक बता दिया ना आगे।
अच्छा सम्यक्त के बारे में तो वही होगा ना सम्यक्त का जगन्य कैसा होगा
एक समय
तो कुछ वो तो संख्या नाना जीवन का 12 कथाओं का कब होगा जगन्य
सर्वविशुद्ध
समय वो कितना होगा
अवली का
संकल्प 7-9 कथाओं में भी वही सही
अवली का संकल्प
सर्वार्थ सिद्धि में सब प्रकृतियों के जगन्य अनुवाद के उद्देशकों का जगन्य का लेख समय और उत्कृष्ट काल संकल्प क्योंकि वहाँ तो संख्या अजगन्य अनुवाद के उद्देशकों का काल सर्वदा है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए अंतर दो प्रकार का है जघन्य और उत्कृष्ट
हाँ
नाना जीवन के अपेक्षा अंतर की बात करें अब जघन्य को बोलो पहले में पहले हमने ये सोचना है कि उत्कृष्ट का अंतर कैसे होगा
अनुत्कृष्ट
करके फिर उत्कृष्ट हुआ तब एक जीव की अपेक्षा या
नाना जीव की
अपेक्षा पहले हम एक जीव की अपेक्षा सोचेंगे तो ये बात ख्याल में आएगी और दोबारा उसका अंतर कैसे करेंगे एक जीव की अपेक्षा जब वो संगी पंची लिए अवस्था में उसको भी संतुलित करेगा तब अब वैसे अभी यहाँ हमने काल कितना देखा लगातार
आवली का
नाना जीवन के अपेक्षा
आवली का अस्तंत
काल आवली का अब यहाँ देखते अंतर दो प्रकार का है जघन्य और उत्कृष्ट उत्कृष्ट का प्रकरण निर्देश दो प्रकार का है ओवर आदेश ओवर से सब प्रकृतियों उत्कृष्ट अनुभव के विजयकों का जघन्य अंतर का लेखन है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभव के उद्दीरकों का अंतरकाल नहीं है इतनी विशेषता के सम्मिलित विख्यात के अनुत्कृष्ट अनुभव के उद्दीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकांत पल्लवों के असंख्यात विभाग समान ये मार्गणा का अंतर लिया विशेषा सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की उड़ना के योग्य परिणाम कम से कम एक समय के अंतर से और अधिक से अधिक असंख्यात लोक प्रमाण काल के अंतर से होते इसलिए यहाँ सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के उद्गारकों का जगन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है
यह समय क्रम में ये घटित होगा उत्कृष्ट में असंख्यात लोक प्रमाण का सम्यक्तो का उत्कृष्ट कौन करेगा जो मिथ्यात्व के सम्मुख
सम्मुख
हाँ तो उसमें भी ये असंख्यात लोक प्रमाण काल घटित होगा
अभी तभी तो बता रहे ना क्योंकि उन्होंने उसकी कुछ अलग से बात नहीं की है मात्र समय मिथ्यात्व की बात बताई उन्होंने हाँ सत्ता के सत्ता में तो उसके से सदैव ही रहेगा समय समय मिथ्यात्व का जब तक उसकी स्थापना नहीं होती तो सत्ता में तो उसके से रहेगा ही रहेगा अब यहाँ किसकी बात चल रही है
उत्कृष्ट अनुभाग के उदीर्ण खाता
वो
तो सर्वसंक्लिष्ट परिणाम हो के वो मिथ्यात्व में नहीं
है
हाँ सर्व संकलित परिणाम के साथ लिखे तो इतने काल तक वो भी नहीं करेगा नहीं हाँ वो इससे वो ही अपेक्षा
करने मिथ्यात्व में आने वाले की भी जो कोई संकलित है उसके वेरिएशन सही
हाँ
अलग अलग संकलित के वेरिएशन के साथ मिथ्यात्व में आने ऐसा नहीं कि एक विशिष्ट ही परिणाम होना चाहिए
अच्छा वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है
जैसे समय को प्राप्त करते समय भी
हाँ? अच्छा हाँ वो छोटा असंख्यात लोक प्रमाण है
असंख्यात अभी समय मिथ्या तो
सांतर मार्गना
है वहाँ अन्य प्रकृतियों में क्या क्या लिखा था अनुपुष्ट का अंतर नहीं परंतु समय मिथ्या तो मार्गना का ही अंतर है तो उसकी उदयना में भी अंतर होगा इसलिए उसके जगन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल को ध्यान में रखकर समय मिथ्यात्व के यानी उसका जगन्य अंतर कितना है नाना जीवन के अपेक्षा दून स्थान का
अंतर
एक समय
नहीं नहीं आपने क्या पूछा समय मिथ्यात्व
समय मिथ्यात्व गुण स्थान का नाना गुणों की अपेक्षा अंतर एक समय से लेकर अधिक से अधिक
पल्यकासन
नाना जीवन तो उसको ध्यान में रखकर सम्यक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उद्गारकों का जगन्य अंतरकाल एक समय उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लवों के असंख्यात भाग समान कहा नाना जीवन के अपेक्षा अनुत्कृष्ट का अंतर उत्कृष्ट का नहीं बता अनुत्कृष्ट का अंतर उत्कृष्ट का तो अंदर सबका असंख्यात लोक प्रमाण बताया गया अब आदेश से यही बात है आदेश से सब नाशी सब तिर्यंत सब मनुष्य और सब देवों में जिन प्रकृतियों की उदीर्णा होती है उनका भंग ओघ के समान है मैंने उसके से कहा तो नाना जीवन की अपेक्षा जगन्य अंतर कितना होगा
एक समय
एक समय और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा असंख्यात लोक प्रमाण इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकों में सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के विदेशकों का जघन्य अंतर काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर काल असंख्यात लोक प्रमाण है ये तो अन्य
सामान्य है
परंतु अनुत्कृष्ट अनुभाग के विदेशकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लवों के असंख्यात के भाग क्या फर्क किया? हाँ, अनुस्पृष्ट का उत्कृष्ट अंतर का मनुष्य अपर्याप्त कौन सी बात
है?
और सब प्रकृतियों के बारे में बता, अन्यत्र क्या है? सब प्रकृतियों के अंतर तो सर्वदा से ये शांतर मार्ग है तो सर्वदा घटित नहीं होगा। तो जो मनुष्य अपर्याप्त का जो अंतर है मार्गना का, यहाँ समय मिथ्या की बात नहीं हो रही है। मनुष्य अपर्याप्तों में सब प्रकृतियों की हो रही
है,
अपर्याप्तों का जो अंतर है वो यहाँ घटित है। यानी मनुष्य अपर्याप्त का अंतर जो अधिक से अधिक पल्य का असंख्यात का भाग है उसकी बात चलिए। इसी प्रकार अनाहरक मार्गना तक जानना चाहिए, ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात हो गई। अब जगन्य का प्रकरण है, फिर उल्टा सूत्र नाना जीवन की अपेक्षा जगन्य का अंतर कह रहे हैं। निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मिथ्यात्व 12 कषायें और 69 कषायें जघन्य अनुभाग के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण
कि मिथ्यात्व का तो बराबर है, पर 12 कषाय में भी ऐसा ही होगा।
12 कषाय में कब लेना?
सपना में ना।
8 कषाय में तो काफी भी जाने वाली है।
हाँ, 8 कषाय में सातवें में जाने।
नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य अनुभाग के उदीरकों का जगन्य,
ये अनंत अनुबंधी और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हम यह है तो उसमें असंख्यात लोक प्रमाण काल तक जगन्य अनुभाग होगा ही नहीं।
जगन्य अनुभाग के साथ वो चाहते में नहीं जाएंगे। नौकसाओं को भी ले लिया और अजगन अनुभाग के उद्दीरकों को अंतरकाल में लिया।
ये 69 कषायों का तो हमने 8वें गुण स्थान के अंत में देखा था, तो उसमें असंख्यात लोक प्रमाण इतना काल होगा क्योंकि वहाँ पे तो सपना करने वाले को तो जगत के नियम से 6 महीने में होगा ही ना।
इसका अर्थ क्या होता है? ये लिखा तो है असंख्यात लोग,
हाँ।
तो अभी हम ये क्यों है उसका विचार करते
हैं। अनिवृत्तिकरण में जगत
नहीं
हो सकता,
ये हो रहा, ये फैक्ट है। तो
अच्छा, अपूर्वकरण में, अपूर्वकरण में परिणामों की वेरिएशन हो सकता है,
सकता है। और उसका जो कुछ रूप है उदय में आ रहा है उसकी बात है।
नहीं, 9वें गुण स्थान में जिसकी सपना हो रही है उसमें 6 महीना होगा और अपूर्वकरण में क्या है परिणामों में वेरिएशन
होता है। ये क्यों है इसको हमें तो वहाँ उसकी सत्ता होते हुए उसका उदय मिल गया। तो नाना जीवन की अपेक्षा जो हम यहाँ देख रहे हैं जगन्य रूप से वहाँ उदय
नहीं होगा।
कहाँ होता है जगन्य तो उसके अंदर।
अच्छा, अभी तक मैं ऐसे ही सोच रहा था अपूर्वकरण में अंत में 6 नक्षत्र का नियम से जगन्य होगा, ऐसे नहीं है।
नहीं, कहाँ जगन्य होता है? स्वामी कौन है तो उसके अंदर।
हाँ, पर नियम से सभी का जगन्य होगा।
इसलिए 12 कथाएं को भी ले लिया, अनंतानुबंधी को भी लिया, वो प्रत्याख्यान को लिया, प्रत्याख्यान को लिया। और जगन्य अनुभाग के उदीरकों का अंतरकाल है, समय मिथ्यात्व के जगन्य अनुभाग के उदीरकों का जगन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण,
यहाँ पे भी असंख्यात लोग,
वो भी उसके साथ चौथे में जाने वाला है। अजगन्य अनुभाग के उदीरकों का जगन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्यकों के असंख्या के बाद, ये मार्गणा कांड समय मिथ्यात्व कांड नाना जीवन के प्रति सम्यक्त्व और लोग संजोलन के जगन्य अनुभाग के उदीरकों का जगन्य अंतरकाल एक समय है, उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीना है, क्योंकि हमने देखा है क्योंकि सपना करने वाले लिए सम्यक प्रति यानी दर्शन मुक्ति हो या कार्यक्रम मुक्ति हो, वो सपना में अंतर क्यों नहीं निकाल रहे वहाँ तो उनका समान होगा, वो हर एक को होगा ही होगा जगन अजगन्य अनुभाग के उद्रकों का अंतकार त्रिवेद और नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग के उद्रकों का जघन्य अंतकाल एक
समान
सपना करने वाला लेना
है
और उत्कृष्ट अंतकाल वर्ष पृथक ये वर्ष पृथक को कैसे लेना
तो वो सपना नहीं होगा पर ये त्रिवेद और नपुसक वेद के साथ सपना करने वाले का जीव का अंतर लिया
त्रिवेद सहित शपथ से और नपुसक वेद के लिए उसके सही शपथ से नहीं करने वाले उसका अंतर ले नाना जीवन के और जगन्य अनुभव के उद्गीरकों का अंतर काल नहीं है। तीन संज्वलन और पुरुष वेद के जगन्य अनुभव के उद्गीरकों का जगन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल शादी के लिए देखो यहाँ समय पर लोग के लिए तो छह महीना क्योंकि शपथ श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर
छह महीना
और दर्शन मौके सपना का भी
छह महीना
तो आप कहेंगे ये तो तीन संज्वलन को भी लेना था
तो संज्वलन को
छह छह महीने के अंतर से शपथ श्रेणी वो भी चल रहे हैं संज्वलन का भी वहाँ पर ही अंतर ये होता है जगन तो कुछ वो नहीं लेना है अभी इसकी बात करते हैं किसके क्यों परमुख से उदीर्ण थोड़ी हो रही उदीर्ण की बात तो ये क्यों
मैं बता दूँ
क्रोध
पान में
जरा उनको सोचने दो देखो जो जो क्रोध या नाना जीवन की बात क्रोध सही चढ़ने वाला जीव चपक से नहीं चढ़ने वाला उसमें उत्कृष्ट अंतर कितना होगा नाना जीवन के अपेक्षा शादी के
क्रोध मान
अकेले मान के सही चढ़ने वाला अकेले माया के और कोई भी किसी भी वेद के सॉरी कसाई के सही चलो रात में लोभ में तो आने वाला ही तो लोभ में अंतर छह महीना दिया और अन्य में शादी के वैसे यहाँ पुरुष वेद के लिए शादी के एक वर्ष लिया स्त्री वेद के लिए पृथक का वर्ष लिया नपुसक वेद के लिए पृथक का वर्ष लिया यानी कंडीशन डालना पुरुष वेद सही से भी चढ़े कोई तो उसमें अधिक अंतर कितना हो सकता है तो शादी के एक वर्ष छः ये भी था ना तीन संज्वलन और पुरुष वेद के लिए उत्कृष्ट अंतर शादी के एक वर्ष नीचे से चौथी है शादी के हाँ यानी कंडीशन क्या है नाना जीवों में क्रोध सहित चढ़ने वाले होने चाहिए तब जाके क्रोध का जगन्य होगा सबका जगन्य उसी पॉइंट पर होगा और वो तो इक्वल होगा सबके लिए यानी
मान से भी चढ़ेगा
मान से भी चढ़ेगा तो मान का वो जगन्य होगा माया से ही चढ़ेगा तो क्रोध मान और माया से ही चढ़ेगा तो माया का जगन्य
क्रोध से चढ़ेगा उसका तो सभी का जगन्य
सभी
होगा
कोई लोभ से चढ़ेगा तो उसका क्रोध का मान का माया का जगन्य
होगा ही
होगा ही नहीं होगा ही नहीं उदीर्णा की बात चल रही उदय होगा ही नहीं इसीलिए क्रोध सही चढ़ने वाले कंडीशन है क्रोध सही चढ़ेगा तो ही क्रोध का जगन्य होगा फिर कोई अन्य जीव दूसरे कसान से एक दूसरे में चढ़ते हैं श्रेणी का शपथ श्रेणी का अंतर छह महीना दिया परंतु कंडीशन क्या है क्रोध से ही चलने वाले जीव को कंसिडर करें तो उसमें शादी को अंतर का अंतर ऐसे क्रोध मान माया तीनों में लगाना लोभ में क्यों नहीं लगाना लेना कभी किसी भी क्रोध किसी भी कषाय से चढ़ो अंत में वो लोभ रूप तो होगा ही तो उसका तो अंतर श्रेणी का शपथ श्रेणी का अंतर वहाँ लगा समय प्रकृति में और लोक संज्वलन में तो उसका छह महीने का अंतर लिया अकेले क्रोध सही करने वाले को सारी कर
मान सही कर
दो या मान सही करना वो भी सारी कर सकते और माया के लिए भी सारी कर और पुरुष वेद के लिए भी शादी की थी। अजगण्य अनुभाव के उद्दीरकों का अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, अपना अपना वेग जान लेना चाहिए। यानी जो जिस वेग वाला जीव है उसका वो दाना जीवन की अपेक्षा पूर्ण जीवन का
वहाँ अंतर
कथा है। तथा मनुष्यों में चपक प्रकृतियों के जघन अनुवाद से विरकों का उत्कृष्ट अंतरकार वर्षक तत्व प्रमाण है। यानी मनुष्यों के लिए तो
लोग का भी वर्षक
तत्व है, क्योंकि मनुष्य ने ये कंडीशन डाली। मनुष्य पर्याप्तों में पुरुष वेद नपुंसक वेद दोनों आ गए, तो वहाँ वो साधक वर्ष भी नहीं होता,
कुछ ही महीना
भी नहीं उसके लिए चलता है। दर्शन होने और चारित्रम होने की सपना का जगन अंतर का एक समय नाना जीवन की अपेक्षा बात कर रही है। एक दिन की अपेक्षा तो अंतर ही नहीं है, सबक की बात कर रही है। और उत्कृष्ट अंतर का 6 महीना होने से सम्यक और योग संयोलन लोग के जगन अनुभाव के उद्दीरकों का जगन अंतर का एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीना कहा है। यह जीव पुरुष वेद और तेज के संगलनों के उदय के साथ, जो उदय के साथ से बात है, कम से कम एक समय के अंतर से और अधिक से अधिक शादी एक वर्ष के अंतर से शपथ लेने पर चलता है। इसलिए पुरुष वेद और तेज तीन संगलनों के जगन अनुभाव के उद्यरकों का जगन अंतर का लेखन है और उत्कृष्ट अंतर का शादी के वेद और नपुंसक वेद के उदय से यह जीव कम से कम एक समय के अंतर से और अधिक से अधिक वर्ष पुतत्व के अंतर से शपथ श्रेणी पर चढ़ता है। इसलिए इन दोनों वेदों के जगन अनुभाव के उद्दीरकों का जगन अंतर का लेखन है और उत्कृष्ट अंतर का वर्ष पुतत्व प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम यानी आई बात अन्य में जो है उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोग मिल जाते हैं और एक सपना में वगैरह जो है उसका जो साहित्य अंतर आदेश के रूप में जो है नारकियों में विख्यात और अनंतानंदी चतुष्पते जघन्य अनुभाव के उद्दीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल 7 दिन रात है। उत्तम समय से सही से उत्तम प्रथम उत्तम से चौथा गण स्थान प्राप्त करते हैं। वो मिथ्यात्व के अंतिम समय सबका इक्वल होगा ना, इसलिए 7 दिन रात तक। और वहाँ जो ओग में जो जगन ने कहा था उसका तो असंख्यात लोग को मान रहा है, क्योंकि वहाँ पर विषय भी अलग अलग हो गई है। वेदक समस्त के साथ संयम प्राप्त करने वाला
है
और यहाँ तो प्रथमोत्तम समस्त को प्राप्त करने वाला है, तो प्रथमोत्तम समस्त का जो उत्कृष्ट अंतर है वो यहाँ पर ले गया 7 दिन का। नाना जी उनकी अपेक्षा है ना,
ये मनुष्य की अपेक्षा ये विश्व की बहुत कम होगी। जो 7वें में जो संयम प्राप्त करने को जा रहा है वेदक समय जो चीज से, ये विश्व की बहुत कम होगी।
कम कैसे?
क्योंकि वो संयम प्राप्त करने को जा रहा है और वेदक
ज्यादा
होगी, तो इस फर्क पर विशुद्धि की अपेक्षा बात करेंगे तो जो वेदक समय सातवें में जाने की विशुद्धि ज्यादा होगी ना,
तो आप कम बोल रहे
हैं। नहीं ज्यादा ही बताया मैंने,
ज्यादा कह रहे हैं कि कम
नहीं, ज्यादा कह रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे जो ये प्रथम उत्तम की विशुद्धि है वो बहुत कम होनी चाहिए, इसीलिए रखो।
हाँ यहाँ पर कम है,
हाँ वो वही मैं बोल रहा हूँ।
वहाँ पर भले ज्यादा है विशुद्धि उसकी बात नहीं, वहाँ वो वेदक कर रहा है, यहाँ तो हर एक चीज समान होगी।
यहाँ पे समान होगी
पर वहाँ भले ज्यादा है हाँ। पर उनको कम शुद्धि के साथ भी कोई साथ में नहीं जा सकता
हाँ।
वो बात वहाँ बता हाँ। इसलिए अलग अलग जीवों के परिणाम अलग हो गए। नाना जीवों की अपेक्षा वैसी ही विशुद्धि फिर से होने के लिए
असंख्यात लोग
ये बात बताना चाहिए। असंख्यात लोक प्रमाण काल तो कोई वेद के साथ साथ में नहीं
वो तो नहीं होगा
सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जाने वाला जीव नहीं होगा।
अनिवृत्ति
में तो अनिवृत्तिकरण में तो समान परिणाम हो जाते हैं विशुद्धि समान हो जाती है तो उन सबकी जगह में हो जाती है तो इसलिए 7 दिन रात पान करते हैं। अजगन में अनुवाद से उद्गीरकों का अंतर्पान नहीं है। सम्यक्त्व के जगन में अनुवाद के उद्गीरकों का जगन में अंतर्काल एक समय है और उत्कृष्ट अंतर्काल वर्ष सत्तर समय। भोग में सम्यक्त्व के जगन में का अंतर कितना देखा लक्ष्मी। सम्यक्त्व का जगन में कब होता है ये कैसे सोचना है आपको। सम्यक्त्व का जगन में किसके होता है आप सपना सपना में यहाँ पर भी सुत सुत वेदक उत्पन्न होता है सुत सुत वेदक के आवलित तो कई समय है तब उसका
जगन
वो तो उसका जगन में सर्वत्र है। अब भोग में क्या है तो कौन जो सपना करने वाले वहाँ तो हमने कौन से लक्ष्य में वो अंतिम समय पहुँचा है उसकी बात नहीं कर तो हर 6 महीने में तो सपना करने वाले की होगी अब यहाँ कंडीशन क्या है नारियों में जो कि कुत्ते कुत्ते वेदक के साथ नरक में उत्पन्न होना चाहिए ये कंडीशन लगी
ना वर्ष से इसलिए
क्योंकि कुत्ते कुत्ते वेदक वाला हो सकता है मनुष्य नहीं रहे
सीरियन
हो सकता है मनुष्य नहीं जावे हो सकता है मनुष्य नहीं जावे देव नहीं जावे हो सकता है नरक तो कुछ वेदक के साथ नरक में आने के लिए कुछ अंतर नाना जीवन के अपेक्षा वर्ष क्योंकि ये लिखा है तो वो तो सही है हमें ऐसा सोचना कि ऐसा क्यों लिखा होगा वहाँ तो हमने 6 महीने का देखा था वो क्योंकि हर 6 महीने में कोई ना कोई जीव सपना करेगा ही उसको कुछ अंतर ही 608 जीव तो करते ही करते वहाँ कर दिया हमने अजगन में अनुवाद के उद्गीरकों का अंतर नहीं है। सम्यक निख्यात्व का भंग ओस के समान है यानी सम्यक निख्यात्व का जगन्य करने के लिए हमने क्या देखा था
तो
एक समय और उत्कृष्ट वहाँ भी असंख्यात
होवली का असंख्यात
आप
अच्छा मैं कार देख रहा हूँ पन्न का असंख्यात
अच्छा
असंख्यात
आप मार्गना का कार देख रहे हैं वो बात अंतर देख रहे हैं अजगन्य के साथ अंतर अजगन्य का अगर कहेंगे हम तो अजगन्य में तो पल्य का अंश में तो वहाँ
पल्य का अंश अजगन्य
का पल्य का उत्कृष्ट और जगन्य अंतर एक समय होता अजगन्य में तो मार्गना का अंतर
जगन्य में लो असल क्या
और जगन्य में कब है वो जगन्य के साथ चलते नहीं जाना वहाँ तो असंख्यात लोग बारह कषाय नारकियों में 12 कषाय और 7 नौ कषायों से जगन्य अनुभाव के उद्गीरकों का जगन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण ये तो हमने ओम में भी देखा 12 कषाय और 7 नौ कषाय 6 नौ कषाय ये यहाँ तो जो सभी है वो सब ये पुरुष है तो है ही नहीं यहाँ अजगन्य अनुवाद के उद्गीरकों का अंतर्काल नहीं है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जाना दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व का भंग कषायों के समान है उन्हें जगन्य का उत्कृष्ट अंतर वहाँ पर भी
असंख्या
और विशेषता हम कर लेते हैं
हाँ
हाँ
Thank you.
सब जगह लिया है, मात्र नरक में नहीं है,
सभी जगह इतना लिया है।
जहाँ समय तो क्या है, छोटे छोटे वेद उत्पन्न नहीं होते वहाँ पर भी ऐसे कहेंगे। 12 कषाय और 9 कषायों के बारे में ओम ने भी ऐसा ही कहा था, जैसे उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोग लेते हैं, वैसे जघन्य का भी उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोग लेते हैं। मात्र जो सपना में जघन्य होता है वो अपना अपना जो यथा अंतर अलग रहता है। तो इसकी बात कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से तुझे लो पालो, सोवानी मस्तक न सदा देतो।